Radio Living.
Om Shanti. Wish you all a wonderful morning. Brahma Kumaris ke Art and Culture Wing dwara ayojit e-conference ke tisre satra mein aap sabka bahut bahut hardik swagat hai, shubh swagat hai. Role of artist in challenging situations. Vartaman chunauti bhari paristhitiyon mein kalakaron ki bhumika. Is vishay par आयोजित ई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ रहे एमिनेंट स्पीकर्स और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले आप सभी भाई बहनों का तथा आज के हमारे एक्सेलेंट व्यूअर्स का दिल से स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वीकार करें। सर्वप्रथम अब मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए सविनय आमंत्रित करती हूँ प्रीतपाल सिंह पन्नू जी को, अ रिप्यूटेड यूथ लीडर, फिलैंथ्रोपिस्ट, ट्रेनर एंड सोशल एक्टिविस्ट, फाउंडर ऑफ NIFAA, अ सेल्फ मेड मैन एंड अ ट्रू विजनरी। ही बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय हिज ऑर्गेनाइजेशन NIFAA. He was honored with the prestigious Balraj Sahani National Award and felicitated with the National Youth Award. Prithpal Singh ji se anurodh hai ki apne amulya vichar hamare samaksh rakhe.
Om Shanti Mitro. Aaj corona sankat kal ke dauran jab har vyakti apne line se bhatak chuka hai, हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है लाइन से उखड़ चुका है, परमात्मा ने एक ऐसा दौर चला दिया कि इस दौर के चलते हर व्यक्ति को आज ऑनलाइन होना पड़ा और आज हम सब भी ऑनलाइन होकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू के आर्ट एंड कल्चर विंग द्वारा आयोजित इस वेबिनार से जुड़ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार रखने के लिए और विचार सुनने के लिए. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आर्ट एंड कल्चर विंग के इंचार्ज दयाल भाई जी को, सतीश भाई जी को और इस पूरे विंग की प्रमुख कुसुम दीदी जी को, जिन्होंने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना, वर्तमान चुनौतियों में कलाकार की भूमिका. मित्रों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कलाकार क्या है, क्योंकि अगर हम दुनिया की बात करें तो हम कलाकार उनको समझते हैं जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, नाटक करते हैं, नृत्य करते हैं, संगीत के वाद्य यंत्र बजाते हैं, कुछ गीत गाते हैं, या हम उनको कलाकार मानते हैं जो कैनवस पर अपने ब्रश से, अपने रंगों से चित्र बनाते हैं. हम उनको कलाकार समझते हैं मित्रों जो परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट, कोई ना कोई ऐसी विधा जो कला की है उसके साथ जुड़े हुए हैं. लेकिन अगर हम बात करें उस ईश्वरीय सत्ता की ओर से बनाए हुए कलाकार की, तो हम में से हर व्यक्ति कलाकार है मित्रों. उस परमात्मा रूपी डायरेक्टर के हाथ में हम सब कठपुतलियां हैं और जैसा जैसा रोल उसने हमें दिया है वैसा वैसा रोल हम इस दुनिया में कर रहे हैं. जैसा जैसा वो हमें नचा रहा है वैसे वैसे हम नाच रहे हैं. हम सबके रोल जो है उसने लिख कर भेजे हुए हैं और वो रोल हम कर रहे हैं. अगर दृष्टिकोण से देखें तो हम में से हर व्यक्ति कलाकार है. और एक चीज और मैं अक्सर कहता हूं कि कलाकार का मतलब है जो कल को आकार दे, कल कैसा होगा, आने वाला भविष्य कैसा होगा. तो इस दृष्टिकोण से देखें तब भी हम में से हर व्यक्ति कलाकार है, क्योंकि आने वाली सृष्टि कैसी होगी, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी. आने वाला समाज कैसा होगा, आने वाला राष्ट्र कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा, ये निर्भर करेगा इस बात पर कि हम लोगों की सोच कैसी डेवलप हो रही है, हम किस प्रकार के काम कर रहे हैं। मैं परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो कोरोना लेकर आया। आप कहेंगे अजीब मूर्ख आदमी है, कोरोना से दुनिया त्राहिमाम कर रही है, दुनिया चाहती है कोरोना जल्दी खत्म हो, पर ये कैसा विचित्र प्राणी जो है आज आर्ट एंड कल्चर विंग ने बुला लिया जो परमात्मा को धन्यवाद दे रहा है कि वो कोरोना लेकर आया। पर मित्रों एक बात कहूं, कई बार बहुत बड़े नुकसान को बचाने के लिए छोटे नुकसान को सहना पड़ता है। ये दुनिया जिस ओर जा रही थी, परमात्मा को भूल चुकी थी, मान मर्यादाएं खत्म हो रही थी, संस्कार खत्म हो रहे थे, व्यक्ति कहीं ना कहीं मांसाहारी होता जा रहा था, शाकाहार से दूर भाग रहा था, अपने उस अस्तित्व को मानव भूल चुका था जिसके लिए परमात्मा ने कलाकार बनाकर इस दुनिया में भेजा था, मानव बनाकर इस दुनिया में भेजा था, अपने रोल को निभाना व्यक्ति भूल चुका था। हमारी श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्म कुमार भाई बड़े लंबे अरसे से हमको समझाते आ रहे हैं कि कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। और ये जो परिकाष्ठा हो चुकी थी पाप की, दुष्कर्मों की, गलत आदतों की, व्यभिचार की, अपराधों की, ये कहीं ना कहीं सुर इशारा कर रहे थे कि कलयुग जाने वाला है। बहुत से लोग सुनते थे, बहुत से लोगों पर असर होता था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो मानते नहीं थे। आज इस कोरोना के एक झटके ने कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर भी यह एहसास पैदा कर दिया, उनके अंदर भी ये जागृति पैदा कर दी कि हमारी बहनें, ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमारी भाई जो कहते आए हैं वो सत्य है और उसके सत्य सिद्ध होने का समय आ चुका है। मित्रों, एक कलाकार होने के नाते, चाहे हम स्टेज के कलाकार हैं, चाहे हम रंगों के कलाकार हैं, चाहे हम वाद्य यंत्रों के कलाकार हैं, या उस परमात्मा के बनाए हुए रोल को अदा करने वाले कलाकार हैं, ये जो वैश्विक चुनौती चल रही है इसमें हमारी भूमिका क्या हो, इसमें हमारा रोल क्या हो, इस पर हमें मंथन करना होगा, इस पर हमें चिंतन करना होगा। हमारा सबसे बड़ा रोल ये है मित्रों कि परमात्मा ने जिस काम के लिए हमें भेजा है हम उसको बखूबी निभाएं। ये जो संकट है ये आते भी हैं जाते भी हैं, आते जाते रहते हैं, ये कोई पहला संकट नहीं है जो इस दुनिया पर आया है। अगर हम स्पेनिश फ्लू की बात करें तो 5 करोड़ लोग मारे गए थे उस समय, आज से 100 साल पहले। इससे बड़े बड़े वायरस, इससे बड़े बड़े रोग पहले भी आ चुके हैं जिससे लाखों करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं, तो ये कोई ऐसा संकट नहीं है जो पहली बार आया है। लेकिन हमें एक चीज सोचनी है कि हमारे पास जो भी कला है हमें उस कला का इस्तेमाल पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करना है, सकारात्मकता के लिए करना है। समाज में जो नेगेटिविटी फैल रही है कि कोरोना से क्या होगा, कितने लोग और मरेंगे, क्या मुझको तो नहीं हो जाएगा, पड़ोसी को हो गया तो मुझे उससे बचकर रहना है, मुझे उससे बात तक नहीं करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग को हमने सोशल डिस्टेंसिंग में बदल दिया, कोरोना के ऐसे लोग जिनको कोरोना हो गया, जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी लाश को कोई जो है, यहां तक कि उनको जो है शमशान घाट भी उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे। ये नहीं होना चाहिए, ये ना हो, इसके लिए हमें पॉजिटिविटी भरनी है अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी भाषण कला के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, कैनवस पर अपने रंगों के माध्यम से हमें समाज में पॉजिटिविटी भरनी है, सकारात्मकता लेकर आनी है। और परमात्मा ने हमें भेजा है मानवता की सेवा करने के लिए, परमात्मा के साथ जुड़े रहकर उस ईश्वरीय ज्ञान को अनुभव करके उस ज्ञान को फैलाते हुए हमें मानवता के साथ व्यवहार करना है, यही हमारा रोल है। अगर हम इस रोल को बखूबी नहीं निभा रहे तो कोरोना काल हो या कोरोना काल ना हो, हम लोग कहीं ना कहीं प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, ईश्वरीय सत्ता के खिलाफ जा रहे हैं। तो मित्रा, मेरा आपसे अनुरोध है कि चुनौती तो चली जाएगी, ऐसी कई चुनौतियां मानव इससे पहले झेल चुका है, लेकिन ये चुनौती हमें एक शिक्षा देकर जा रही है। वो शिक्षा वही है जो बाबा ने दी, वो शिक्षा वही है जो हमारे गुरुओं ने दी, वो शिक्षा वही है जो हमारे संतों महापुरुषों ने दी, वो शिक्षा वही है जो पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी की हमारी बहनें और हमारे भाई फैला रहे हैं। वो शिक्षा है अपने अंदर सद्गुणों का समावेश करें, ईश्वर के साथ जुड़कर रहें, उस परमात्मा की ज्योति के साथ जुड़कर रहें, अपने अस्तित्व को पहचाने कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उस अस्तित्व को पहचाने और आत्मा के नाते मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मेरा कुछ रोल है जो उस परमात्मा ने मुझे देकर भेजा है। और एक चीज नोट कर लेना मित्रों, आपको जो रोल संसारिक निर्देशक दे या वो सर्वशक्तिमान परमात्मा दे, अगर हमें को रोल दिया गया है, मंच पर अपना रोल ना करें और मंच के पीछे जो है डायरेक्टर की फोटो पर फूल चढ़ाते रहें, हार चढ़ाते रहें, वो डायरेक्टर कभी खुश नहीं होगा। ऐसे ही वो सर्वशक्तिमान पिता भी खुश नहीं होगा उसके दिए हुए रोल को ना निभाते हुए हम लोग केवल उसकी फोटो के ऊपर फूल चढ़ाते रहें, केवल माथा टेकते रहें, वो खुश नहीं होगा। आओ उस परमात्मा को खुश करें, उस सर्वशक्तिमान को खुश करें, स्वयं अपने अंदर खुशियां भरें, परिवार के अंदर खुशियां भरें, समाज के अंदर खुशियां भरें और जहां तक हो सकते समाज के अंदर अच्छे गुणों का प्रचार करें, पॉजिटिविटी का प्रचार करें, शाकाहार का प्रचार करें और अपनी कला का उपयोग जो है वो इस समाज में जो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन आ रहा है उसको दूर करने में उस कला का इस्तेमाल करें। आप सभी को कोरोना संकट से परमात्मा जल्दी मुक्ति दे, मानवता इस संकट से जल्दी मुक्त हो और आप लोग पहले की तरह जैसे हम लोग माउंट आबू जाया करते थे, वहां बैठकर प्रवचन सुनते थे, ध्यान योग करते थे, वो समय आप सभी को दोबारा से मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।
प्रीतपाल जी, आपका अंतर मन से शुक्रिया अपने अनुभव युक्त विचार प्रस्तुत करने के लिए। अब माउंट आबू में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीमंत साहू। आपसे अनुरोध है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए व्यसन मुक्त बनने की प्रैक्टिकल टिप्स हमसे शेयर करें।
सभी कलाकार और कला प्रेमी भाई और बहनों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बहुत एक सुंदर टॉपिक चर्चा करेंगे। अगर सारी दुनिया में देखा जाए, हर व्यक्ति आज किसी ना किसी नशे में है। किसी को धन दौलत का नशा है, किसी को पद प्रतिष्ठा का नशा है, किसी को बहुत सुंदर शारीरिक सुंदरता या जवानी का नशा है, कोई तो बहुत ऊंच जाति पाति का है उसका नशा उसको है, किसी को एक्सरसाइज का नशा है, कुश्ती कसरत का नशा है, किसी को संगीत का, गीत संगीत का, म्यूजिक का नशा है, किसी को शॉपिंग मार्केटिंग का नशा है, किसी को कंप्यूटर और मोबाइल का नशा है, व्हाट्सएप का नशा है, किसी को खाने पीने का खूब नशा है, तरह तरह का बना के खाऊं। आज हर एक व्यक्ति, किसी को तो देखिए जुआ खेलने का, सट्टा लगाने का उसका भी नशा है, किसी को तो कामकाज का नशा है, तो किसी को काम विकार का भी नशा है, तरह तरह के नशा। कोई भी व्यक्ति आज दुनिया में, एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको कोई नशा ना हो। नशा सबको है, किसको नहीं है, और नशा चाहिए भी जीवन में। नशे के बिना जीवन क्या जीवन है, मजा ही नहीं आएगा। नशा तो चाहिए, कोई ना कोई नशा तो चाहिए। लेकिन जितने भी नशा दुनिया में है, ये सारी जो नशे दिख रहे हैं आप, ये दो प्रकार के हैं। कुछ नशा तो बहुत अच्छा है, फायदामंद भी है, जैसे कोई वर्कहोलिक है, काम करता रहता है, बहुत अच्छा एक्टिव लाइफ है, अच्छा है, बहुत आउटपुट अच्छा है, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा होता है, अच्छी बात है। और किसको गीत संगीत की भी अगर नशा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें सबको मन को बहलाता है, अच्छी बात है। आप सभी कलाकार हैं तो आप देखो कितनी सेवा करते हो आप, जो उसमें आपको नशा भी चढ़ता है और सबको नशा चढ़ा देते हो, बहुत अच्छी बात है, ये नशा भी बहुत सुंदर है। तो कुछ जैसे किसी को एक्सरसाइज का नशा है, वो एकदम फिटनेस का नशा है, लगा रहता है हेल्थ ठीक रहता है। तो कुछ नशा तो शरीर के लिए चाहिए जो अच्छा है, लेकिन कुछ नशा जिसे नुकसानकारक भी है, जैसे अभिमान अहंकार का नशा, पदवी का नशा, पैसा का नशा है, कभी कभी ईगो का रूप लेता है व्यवहार में, फिर मुश्किल पैदा करता है। तो कुछ नशा हानिकारक है, लेकिन सबसे ज्यादा हानिकारक नशा आज हमारे देश भर में और सारे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको ड्रग्स कहते हैं हम। इसका लत अगर किसी को लग गया तो उसका भी अपना व्यक्तिगत जीवन का भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उसका, और उसका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, उसके आर्थिक जीवन पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जो ड्रग्स है, जिसको हम नशीली पदार्थ कहते हैं, एक्चुअली ड्रग्स का मीनिंग मेडिकल साइंस में किसी डॉक्टर को पूछेंगे ना, वो ड्रग्स कहता माना कोई मेडिसिन के बारे में कह रहा है जिससे हमारा फायदा होता है। लेकिन आमतौर पर जो नशा के लिए ड्रग्स कहा जाता है और नशीली चीजें हैं, वो बहुत नुकसानकारक है। उसमें जैसे कुछ बहुत सॉफ्ट एडिक्शंस होते हैं, उसमें माना इजीली उसे आप छुटकारा पा सकता है कोई, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो एडिक्शंस है जिससे आदमी छूट नहीं पाता है, कितना भी लाख प्रयास करे छूट नहीं पाता है, उसको हार्ड ड्रग्स कहते हैं। तो ड्रग्स माना या नस्ली चीजें जो कहते हैं, वो वास्तव में कुछ नेचुरल हो या केमिकल हो, कोई भी ऐसी चीजें, एक बार अगर उसका सेवन करने के बाद आदमी उसके बिना रह नहीं सकता है, जब तक फिर दोबारा नहीं खाता है उसका, जब तक असर जब तक बॉडी में नहीं है वो बेचैन हो जाता है। इसलिए वो चीजों को जब छोड़ता है आदमी, विथड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, अर्थात बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, पसीना छूटेगा, धड़कन तेज हो जाएगा, नींद उड़ जाएगी, क्या क्या हालत हो जाता है लोगों का, तो जिसके कारण फिर वो छोड़ नहीं पाते हैं वो चीज को। आज ऐसी चीजें जो सॉफ्ट ड्रग्स है, जैसे कि सिगरेट, शराब, तंबाकू या खैनी, ये सब चीजें छूट सकता है, कोई छोड़ना चाहता है तो छोड़ भी देता है, लेकिन छोड़ तो नहीं पाते हैं लोग, नहीं छोड़ पाते हैं। भले उसको सॉफ्ट ड्रग्स कहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। लेकिन कुछ हार्ड ड्रग्स है जो कि एक बार उसके लत में कोई लग गया किसी को, तो बस हो गया कल्याण, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। जैसे कि मॉर्फिन है, कोकेन है, हेरोइन है, गांजा है, चरस है, ये सब चीजों का एक बार कोई ले लिया तो बस। कुछ चीजें जो नेचुरल रूप में पौधे से, जैसे गांजा है, भांग है, ये सब खैनी है या गुड़ाकू है, टबाको है, ये सब पौधे से नेचुरल सोर्स से लोग बनाते हैं, देसी शराब भी लोग बनाते हैं। परंतु कुछ चीजें केमिकल्स भी हैं, जैसे मॉर्फिन इंजेक्शन, पेंटाजोसिन इंजेक्शन, कोई तो कॉफ सिरप, कोडीन को भी लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं उसका भी एडिक्ट हो जाता है। तो हेरोइन है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एलएसडी है, बहुत डेंजरस है, एक बार उसका लत लग गया तो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आज समाज में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा ये कलंक है, मैं कहूंगा, और आर्थिक समस्या के लिए तो एक देश के लिए बहुत आर्थिक बोझ है, क्योंकि एक बार आदमी को इस प्रकार का लत लग गया तो बेकार हो जाता है, वो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, वो देश के लिए क्या सबके लिए एक बोझ बन जाता है। सबसे पहले तो उसको देखिए, कोई अगर ऐसी नशीली चीजें रेगुलर लेता है, तंबाकू, सिगरेट आदि, शराब आदि की सब चीजों का आदत हो जाता है, उसको कैंसर होता है सबको पता है, हार्ट अटैक होता है सबको पता है। लेकिन मैं कहूंगा एड़ी से लेकर चोटी तक ऐसा शरीर का अंग नहीं जिस पर उसका बुरा प्रभाव ना होता, सारा शरीर को बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। आज अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मैं मुंबई से पढ़ा हूं, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूं, एक बार जाके आप टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट विजिट करके आ जाओ, फिर पता चलेगा क्या होता है। लोग बड़े शौक से पीते हैं, पहले शौक से नशा करते हैं, लेकिन बाद में बहुत महंगा पड़ता है, अगर एक बार कैंसर हो गया सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। आप जाके देखिए एक बार, कभी भी एकदम उस तरफ कभी भी रुचि नहीं होगी, देखने के लिए इच्छा नहीं होगी। लोग बहुत अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता है ये सब चीजों का दुष्प्रभाव, इसलिए संभ दोष में आके या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कभी कभी तो बच्चे माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप खैनी ले रहे हैं, गुड़ाखू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो बच्चे भी छिपा के पहले शुरू कर देते हैं, फिर बाद में, और देखते हैं पिक्चर्स में फिल्म स्टार्स सब पर्सनालिटी के लिए पी रहे हैं, तो खुद भी अपना पर्सनालिटी बनाने के लिए भी लोग पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक बार लत लग गया तो बस बुरा हाल, जिंदगी बर्बाद। और देखा जाता है कि ये नशीली चीजों की आदत, दुनिया में ऐसा कोई वर्ग नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई आयु नहीं, हमारे राजस्थान में तो महिलाएं भी बहुत सारा ये सब बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गांव गांव में भी, एक्सट्रीम पेरिफेरी में भी जाओ देखना तंबाकू का, गुड़ाखू का, खैनी का, कैसे सबको आदत है। भारत में इतने लोगों को ये सब गलत आदतें हैं, बात मत पूछो, ये देश के लिए बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, कितना पैसा खर्च होता है हॉस्पिटल में, कितना पैसा बर्बाद होता है, और साथ साथ वो व्यक्ति इतना एक्टिवली काम भी नहीं कर पाता है, और उसके दिमाग कोई निर्णय शक्ति बेकार हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, नशे में रहता है तो अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाता है, झगड़ेलू बन जाता है, घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा मार पीट, समाज में सामाजिक ऐसे सब क्रिमिनल एक्टिविटी चलती है, लोग क्या क्या करते रहते हैं, जाके लूटमार करते हैं। हमारे पंजाब तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, सरकार भी इसके लिए चिंतित है। अच्छे खानदान के परिवार के बच्चे, यंग बच्चे क्या क्या कर रहे हैं सभी को पता है, सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, ये लत से कोई एक बार निकल नहीं सकता है। तो एक तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है, दूसरा वो झगड़ेलू बन जाता है तो समाज में परिवार के लिए बहुत अशांति फैलाता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज करता रहता है, तीसरी बात उसकी आर्थिक समस्या एकदम बिगड़ जाता है, चौथी बात वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभाता है, जो ड्यूटीज है करता नहीं ठीक से, और उसका प्रभाव उनके बच्चों पर कैसे होगा, अगर कोई फैमिली मेंबर है, माँ बाप कोई अगर नशीली चीजें लेते हैं तो उनके बच्चों पर क्या असर होगा, सोचिए नशा लेके घर में डेली लड़ाई झगड़ा हो माँ बाप का, तो बच्चों का जीवन कैसे होगा, आगे के लिए वो कैसे बच्चे बनेंगे बताइए, उस पर भी असर होता है। तो आज दुनिया में जितने एक्सीडेंट्स देख लो, जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहा है आप देखना, अधिकतर लोग नशे में आकर गाड़ी चलाते हैं, उनका सुधबुद्धि नहीं रहता, निर्णय शक्ति गायब हो जाता है बिल्कुल, डिसीजन पावर बिल्कुल एकदम जीरो हो जाता है, क्या करना समझ नहीं आता। तो इसलिए नशा अच्छा तो है, लेकिन जिसमें फायदा है वो नशा हमें चढ़े तो अच्छा है, लेकिन ये बुरी आदतें हैं, ये तो समाज के लिए कलंक है, और जिसके जिसको नशा का ये आदत हो गया, देखना लोग किस नजर से उसको देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी पर भी कितना प्रभाव पड़ता है, लोग उसको एकदम बहुत गंदे नजर से देखते हैं। तो हमें ये सब चीजों से बचना है, लेकिन बचे तो बचे, कैसे बचे हैं? लोग एक बार लत लग गया तो इसे बच ही नहीं पाते। तो मैं आपको आज एक ऐसा नशा बताऊंगा जिससे सारे नशा उतर जाएंगे, सब फीका लगेगा, और नशा सबसे स्ट्रांगेस्ट नशा है, क्योंकि एक बार एकदम स्ट्रांग नशा, जैसे किसी को एकदम पावरफुल मेडिसिन दे देते हैं, एंटीबायोटिक एकदम पावरफुल दे दिया तो, और फिर चुटकू मुटकू एंटीबायोटिक देने से कुछ काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। ऐसे ही जिसको एकदम एक स्ट्रांग नशा चढ़ गया तो बाकी सारे नशा उतर जाता है और छूट सकता है। आप सभी जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बहुत एक स्ट्रांग नशा मैं बताऊंगा, जो एक बार उसका लत लग गया ना उसका बेड़ा पार, कल्याण हो जाएगा, उसमें नुकसान कोई नहीं, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, और एक जन्म तक क्या जन्म जन्मांतर उसका उद्धार हो जाएगा, भला हो जाएगा उसका सारा फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, उसका स्पिरिचुअल लाइफ, सब प्रकार का लाइफ एकदम बहुत सुंदर हो जाएगा। ऐसा एक नशा है, चाहते हैं आप सभी? अगर किसी को भी देखो, बहुत प्रकार के नशा लोगों को है, ये सब बहुत गलत आदत है, हमें ये सब उल्टे सुलटे जो नशीली चीजें हैं इससे दूर रहना है। सिर्फ खुद नहीं, मैं तो कहूंगा हर माँ बाप का ये उत्तरदायित्व है, हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। माँ बाप को खाली बच्चा पैदा करना ये कोई जवाबदारी थोड़ी है, ये तो पशु पंछी जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, वो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक बच्चा को सुशिक्षा देकर, उसको अच्छी संस्कार देकर, उसको एक चरित्रवान व्यक्ति बनाकर अपने पांव में खड़ा कर देना, ये मां बाप का उत्तरदायित्व है। अगर हम वो रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में हम अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उत्तरदायित्व को नहीं निभा रहे। तो इसलिए मैं तो कहूंगा हरेक पेरेंट्स बच्चों के लिए आदर्श है, अनुकरणीय है। हमारे जीवन ऐसा हो, बच्चों को गर्व हो। अगर हम नस्ली चीजें का इस्तेमाल करते हैं, भले हमारे अंदर कितने भी विशेषता क्यों ना हो, बहुत सुंदर कलाकार हम हैं, बहुत सुंदर गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, बहुत सुंदर संगीत बजाते हैं, बहुत सुंदर हमारे पास कला है, सब प्रकार की कला है, लेकिन लोग कहेंगे अच्छा तो है लेकिन और लेकिन शब्द आएगा, तो हमको लोग अच्छे नजरिया से नहीं देखते हैं, ये कलंक है। तो परिवार में भी सबके लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। तो हमें ऐसा नशा चढ़ जाए जो बाकी ऐसे गलत नशा हमारे सब उतर जाए, आज वो चर्चा करेंगे। वो नशा है ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, मेडिटेशन। आपको अगर मेडिटेशन का नशा एक बार लग गया मेरे भाई और बहनों, देखना बाकी सब नशा उतर जाएगा। तो आप जानना चाहते हैं और इसके लिए नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारे उत्तरदायित्व क्या है, बहुत कुछ बातें हमें समझ चाहिए। जब हम सारी बातों को समझ जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं, हमारे अंदर जो ईश्वरीय शक्ति का संचार होता है जिससे मनोबल बढ़ता है। आज लोगों को पता है, देखिए इवन डॉक्टर्स को भी पता है कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है, कौन सा डॉक्टर को पता नहीं है, लेकिन खुद भी दें। शराब पीने से नुकसान होता है, किसको पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी आपको एडवाइस करेंगे थोड़ी पिया करो। अरे भाई, जो जहर है तो जहर है, थोड़ी थोड़ी क्यों पिए, क्योंकि खुद छोड़ नहीं पाते हैं तो दूसरों को भी कहते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो। बिल्कुल नहीं, जो जहर है बिल्कुल टच नहीं करना, ऐसी चीजों से मुंह मोड़ देना चाहिए। तो डॉक्टर भी क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसका कारण है कि उनके मनोबल नहीं है, अंदर शक्ति नहीं है, आत्मा कमजोर है। अंदर शक्ति है तो सहज ही छूट सकता है, ये सारी चीजों से कोई छुटकारा पा सकता है, लेकिन वो मनोबल बढ़ाने का एक ही मात्र तरीका है और कोई रास्ता नहीं है। कोई दवाई से, आप भले कोई डी एडिक्शन सेंटर में जाओ, जाते हैं लोग, थोड़े दिन के बाद फिर वही हालत, पुनर्मुसी का भाव हो जाते हैं। लेकिन अगर सदाकाल के लिए ऐसे नस्ली चीजों से आप छुटकारा पाना चाहते हो, मेरे भाई और बहनों, मेडिटेशन सीखो। इससे इतना तीव्र मनोबल बढ़ता है। आप स्वामी विवेकानंद का कभी राजयोग मेडिटेशन किताब पढ़े हो, आप पढ़ना कभी देखना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक योगी आफ्टर मेडिटेशन ऐसा अनुभव करता है जैसे कि सारा समुन्दर को पी जाऊंगा, हिमालय को उठा के फेंक दूंगा। योगी आफ्टर मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस एज इफ ही कैन एनगल्फ द एंटायर ओशन, ही कैन शेक द हिमालय। इतना शक्ति का एहसास होता है, अनुभव होता है। तो मनोबल जब तक हम नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए तीव्र मनोबल चाहिए, दृढ़ता चाहिए, कुछ भी हो जाए छोड़ना है मुझे, तो वही हो सकता है। नहीं तो अगर वीकनेस है फिर से एडिक्ट हो जाएंगे। तो हमें जैसे एक छोटा बच्चा एक खिलौना लेके खेल रहा है, उसमें उसको इंजरी हो सकता है, मान लीजिए एक चाकू लिया है, आप उसको चाकू छुड़ाना चाहते हो तो उसको अच्छी कुछ ऐसे खिलौना देंगे तो वो जाके छोड़ सकता है। जैसे कोई मान लीजिए डेली आप देखते हो गुड़ खा रहा है, उसको कोई अच्छी मिठाई देंगे तो गुड़ छोड़ेगा। जैसे हम किसी को बताया एंटीबायोटिक एकदम वीक दवाई दे रहे हैं, तो उससे अगर ठीक नहीं हो रहा तो हमको स्ट्रांग दवाई देनी पड़ती है। कोई कम सैलरी कम पगार वाला कोई नौकरी करता है, उसको अच्छा जब मिल जाएगा तो नेचुरल छोड़ देगा। ऐसे ही मेडिटेशन सबसे स्ट्रांगेस्ट नशा है, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन द स्ट्रांगेस्ट इंटॉक्सिकेशन। एक बार ये नशा चढ़ गया तो बेड़ा पार, अपना भी कल्याण, सबका कल्याण, दुनिया का कल्याण कर देंगे आप। तो मेरे भाई और बहनों, मेडिटेशन सीखो। लेकिन आज दुनिया में तरह तरह का मेडिटेशन सिखाते हैं। कोई कहते हैं बैठ जाओ चुपचाप, कुछ सोचो नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, उसको मेडिटेशन कहते हैं। अरे भाई, उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। मेडिटेशन शब्द आया है मेड्री सबसे, MEDRI, मेड्री। मेड्री माना टू हील। वो हमारे थॉट से ही हीलिंग होती है। ए पॉजिटिव थॉट हील्स, ए नेगेटिव थॉट किल्स। इसलिए जब तक हमारे सोच विचार को ठीक नहीं करते हैं, हमारे अंदर हीलिंग होगी नहीं। तो मेडिटेशन का अर्थ है पॉजिटिव थिंकिंग, द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इट इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो मेडिटेशन में चुपचाप बैठ जाना, उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। कई लोग कहते हैं आप कितने समय तक बैठेंगे, आंख बंद करके कितने समय तक बैठ सकता है बिना सोचे, बैठ सकते हैं कोई? जब तक जिंदा है सोचना तो पड़ता ही है, जिस दिन मर जाएंगे हो गया बस। इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि अपने सांस में ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, उसको मेडिटेशन समझता है। वास्तव में वो भी मेडिटेशन नहीं कहा जाता उसको। मेडिटेशन शब्द तो वास्तव में बाद में अंग्रेज लोगों ने दिया है, हमारे देश में इसको योग कहा जाता है। जो भगवान आके हमें सिखाते हैं, भगवान स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो हमें हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, मानसिक दुश्चिंताओं से बचने के लिए। आज लोग, बहुत लोग नशा क्यों करते हैं? टेंशन है, दुनिया भर की टेंशन है, इसलिए उस टेंशन से बचने के लिए लोग नशा करते हैं, और नशा फिर और ही नुकसान पैदा करता है और टेंशन बढ़ाता है। तो टेंशन से बचने के लिए एक ही मात्र विधि है, वो है योग, जिसको बाद में लोगों ने मेडिटेशन कह दिया, लेकिन वो है योग, वो है राजयोग। और परमात्मा स्पिरिचुअल फादर है, सुप्रीम फादर है, वो हमको स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, समझ देते हैं जीवन क्या है, संसार क्या है, हम क्यों आए हैं, जीवन का हमारे क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब सारी बातों को हम समझ जाते हैं, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, रूहानी ज्ञान कहा जाता है, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। एक ही मात्र सेंटर है जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, सारे वर्ल्ड में एक ही यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। और दुनिया में कहीं भी स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाया जाता है, सब रिलीजियोसिटी सिखाया जाता है। आज दुनिया में एक परमात्मा है जो स्पिरिचुअल फादर है, वही हमें स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं। आज स्पिरिचुअल ज्ञान तो है ही नहीं लोगों के पास, स्पिरिचुअलिटी से स्पिरिट तो निकल गया, खाली रिचुअल्स रह गया। स्पिरिचुअल से स्पिरिट निकल गया, खाली रिचुअल्स ही रह गया। लोग खाली डेली मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, कि माला फेरना, भजन करना, कीर्तन करना, ये सब में लगे रहते हैं, नमाज पढ़ना, इसी में लगे रहते हैं, इसको रिचुअल्स कहा जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आज किसी के पास है ही नहीं। अनली स्पिरिचुअल फादर कैन गिव दिस स्पिरिचुअल नॉलेज। जब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाता है और उस स्पिरिचुअल फादर को बहुत प्यार से, प्रेम से जब याद करते हैं, उसको योग कहा जाता है। भगवान को बड़े प्यार से, प्रेम से याद करना, उसका नाम ही योग है, मेडिटेशन है। बाकी बुद्धि में इधर उधर बातें सोचते रहना, उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। क्योंकि जिसके बारे में सोचेंगे आप, उस जैसा ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। आप परमात्मा पिता सर्वगुणों का सागर है, तो उनके बारे में जब आप चिंतन करेंगे तो नेचुरली आपके मन में खुशी, आनंद, प्रेम पैदा हो जाएगा। एकदम आप जैसे परमात्मा समर्थ है, ऐसे आप भी ऐसे बन जाएंगे। और परमात्मा हमें तो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाता है, नर से नारायण बना देता है, नारी से लक्ष्मी बना देता है। आज तक भी देखिए, हम मंदिरों में जो लक्ष्मी, नारायण, राधे, कृष्ण, राम, सीता आदि भारतवर्ष में मंदिरों में पूजा करते हैं, जिसकी मूर्ति रखकर, देखना कभी भी वहां जाके सिगरेट, खैनी, तंबाकू चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं क्या? देखिए उनके खान पान कितने शुद्ध है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी थी, एक दिन हम सभी देवी देवताएं थे, सबका खान पान शुद्ध था। लेकिन आज हम अलग अलग धर्म सभी हमारे देश में आए, और धर्म के लोग, और हमारे देश के सब धर्म कर्म खान पान सब बिगाड़ दिए। आज हम पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण करते करते ये सब चीजों के आदती होके हमारे जीवन भ्रष्ट हो गया। अभी परमात्मा फिर से आए हैं हमको सबसे स्ट्रांगेस्ट नशा चढ़ाने के लिए, वो है वास्तव में मेडिटेशन। तो परमात्मा कौन है? जो पाप कटेश्वर है, मुक्तेश्वर है, सर्व पाप हर हर है, हमें सभी दुख अशांति से, दुख दर्द से छुड़ाने वाले, जन्म जन्मांतर निरोगी बनाने वाले, वो है कल्याणकारी, मंगलकारी, सबका पिता, वो है परमात्मा शिव। इसलिए शिव परमात्मा नाम कहा जाता है। जो शिव परमात्मा को पहचान लेता है, उनको बड़े दिल से याद करता है, वो सब प्रकार की ये सब नशीली चीजों से ऑटोमेटिकली दूर हो सकता है। और उसको एक ऑनलाइन मस्ती चढ़ी रहेगी, एक अलग प्रकार का नशा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगेगा, तो ये बाकी सब नशा उतर जाएगा, फीका लगेगा सब, और नारायणी नशा में बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप सभी राजयोग मेडिटेशन सीखो, और आध्यात्मिक ज्ञान सारी दुनिया में कहीं नहीं है। सब जिस्मानी ज्ञान, शास्त्र पुराणों का ज्ञान, बाइबल कुरान का ज्ञान, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कहीं भी नहीं है। एक परमात्मा शिव जो स्पिरिचुअल फादर है, सभी आत्माओं का पिता है, वही स्पिरिचुअल नॉलेज अभी दे रहे हैं। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में रोज हमारी बहनें निस्वार्थ भाव से सिखाते हैं, आप एक बार मेडिटेशन सीख के देखो, फिर जीवन में क्या मौलाई मस्ती, क्या नशा चढ़ता है, क्या खुमारी चढ़ता है देख लेना। बाकी अगर ऐसे नशेली चीजें हैं तो सब उतर जाएगा, सब उसका नशा उतर जाएगा। आपको वंडर लगेगा, उड़ीसा में फुलवाणी एक एकदम छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां खुद में जाके खुद देखा हूं, वहां की बहनें हमारे गांव गांव डीएडिट कर दिए, लोगों के सारे नशा उतार दिए। तो सरकार की तरफ से स्पेशल अवार्ड दिया गया उनको कि जो करोड़ों रुपया खर्च करके भी हम नहीं कर पा रहे थे, आप कर रहे हो, छोटी छोटी बहनें, कमाल है। तो हमारे बहनों के पास वो जादुई छड़ी है, आपको मेडिटेशन सिखा के सारे नशा उतार देंगे, एक नारायणी नशा चढ़ा देंगे, देखना आप एकदम स्वर्ग का जाके मालिक बन जाओगे। इसलिए आप सभी को दिल से बधाई मेरे भाई और बहनों, राजयोग मेडिटेशन सीखो, सभी नशा से मुक्त हो जाओ, बहुत अच्छा। दिल से आपको सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीमंत साहू जी। होलिस्टिक हेल्थ प्राप्त करने के लिए आपके विशेष अनुभव और प्रैक्टिकल प्रेरणाएं सदा हमें याद रहेंगी और अवश्य ही हम जीवन में धारण करेंगे। अब हमें बेहद खुशी है कि डिस्टिंग्विश्ड एक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हैं। दर्शकों ने आपकी कला को देखा है, सीआईडी, जय हनुमान और रक्त चरित्र सीरियल्स में, और सभी ने आपकी कला को दिल से सराहा है। शैलेंद्र जी से अनुरोध है अपना अनुभव युक्त वक्तव्य पेश करें।
ओम शांति। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ब्रह्म कुमारी के लोगों के संपर्क में मैं 2 वर्ष पूर्व आया, जब उन्होंने अपने कला एवं संस्कृति प्रभाग के सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुझे अपने मुख्यालय माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में आमंत्रित किया था एक अतिथि के रूप में। मैं वहां एक जिज्ञासु के रूप में पहुंचा, क्योंकि मैं उनको जानना चाहता था, ये जानना चाहता था वो क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि वहां 5 दिनों तक मैं रहा और जिसने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। मैंने उनसे राज योगा सीखा, मैंने उनसे ये सीखा कि अपरिचितों के साथ कैसे मुस्कुरा के बात करनी है, क्योंकि मुझे जो भी वहां मिलता था मुस्कुरा के मिलता था। दयाल भाई, सुभाष भाई और भी बहुत सारी बहनें मिली, उनसे पहली बार प्रथम बार मिलकर ही लगा जैसे मैं उन्हें शायद युगों युगों से जानता हूं, वो संभवतः मेरे परिवार का हिस्सा है, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार उनसे मिल रहा हूं, और मैं आज तक उनके संपर्क में हूं, अभी भी हूं, शायद जीवन भर रहूंगा। मैंने वहां सीखा कि जीवन की परिस्थितियों से कैसे जूझना है, कैसे निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मित्रों, आज हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और इस वक्त, इस समय राजयोगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें मानसिक शक्ति देता है, जो हमें स्वयं से हमारी पहचान कराता है, परिचय कराता है। मैं जब से निरंतर राजयोगा की प्रैक्टिस करता हूं, प्रयोग में ला रहा हूं प्रातः उठकर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे बड़ी शक्ति मिलती है, आत्मिक बल मिलता है। हमारे कुछ मित्र निराशा में आत्महत्या कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, बहुत ही दुखद स्थिति है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हमें चुनौतियों को, जो विसंगतियां आती हैं जीवन में, उनसे जूझना है, चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करना है। अपनी बात को मैं अपनी लिखी हुई कविता के माध्यम से कहना चाहूंगा और अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जब विपदा जग पे आई हो, जब विपदा जग पे आई हो, घनघोर निराशा छाई हो, तुम आस जगाना मत भूलो, तुम जोश दिलाना मत भूलो। जब मानवता पे संकट हो, घर छोड़ नहीं कोई तट हो, तुम शंख बजाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो। जब अंतर मन थर्राया हो, घनघोर अंधेरा छाया हो, तुम दिया जलाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो, तुम शंख जगाना मत भूलो, तुम शंख बजाना मत भूलो। धन्यवाद मित्रों, ओम शांति।
Hearty thanks for sharing your wonderful, inspiring experiences. Now, It's time to enjoy the melodious song by a well-known spiritual singer, lyricist and composer, B.K. Dr. Damini. Let's connect with the Almighty Source through her devotional song.
मैं तुझको नजर आऊं तू ही मुझको नजर आई है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं मैं तुझको नजर आऊं मुझको नजर आई है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं मैं तुझको नजर खुशियों का तू ही जहान है तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं मैं तुझको नजर आऊं तू ही मुझको नजर आई है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं मैं तुझको नजर
Special thanks to Divine Album singer B.K. Dr. Damini for mesmerizing with her sweet voice. Now, we are honored that Mr. Javed Khan, freelance owner, dealing in manpower, real estates, legalization, management, politics, etc. and a very well-known ghazal singer, Chandan Das, are joining us. Now, requesting Javed Ji and Chandan Das Ji to share their great and soothing experiences.
Namaskar, Salaam. Bhai aur bano, aaj ka jo topic hai, wo the role of artist in the present challenges. Agar hum isko sahi tarike se dekhe, to iska मानी ये निकलता है कि आज की तारीख में जो आर्टिस्ट के जो चैलेंज हैं जो चुनौतियां हैं जो उनके सामने आ रही हैं उसमें किस तरह से उसको लड़ सकता है किस तरह से उसका मुकाबला कर सकता है हम ये देखें कि तकरीबन 4-5 महीने से कोविड-19 की वजह से इस देश भारत के अंदर और दुनिया के तकरीबन 160 ममालिक से भी ज्यादा जो कोविड-19 की वजह से बीमारियों की वजह से जो एक नया बदलाव आया है जो पूरी जिंदगी बदल गई है लोगों की रहना खाना पीना उनके कारोबार उनकी नौकरियां उनका घूमना टहलना उनका परिवार उनके दोस्त उनके गांव के लोग उनके शहर के लोग आप ये देखें कि जिंदगी बिल्कुल पलट गई है एक नए तरीके की जिंदगी लोगों के सामने आ रही है जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आर्टिस्ट को अगर आप देखें तो आर्टिस्ट को हम अपनी लोकल जबान में फनकार या कलाकार कहते हैं ये फनकार जो होते हैं समाज की चीजों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं और उसको अपने आर्ट के जरिए से अपने एक्टिंग के जरिए से लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो आज की डेट में हम देखेंगे कि समाज में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, जिस तरह से एक जिंदगी को हम चुनौती के तौर पे लेते हैं, तो आर्टिस्ट भी अपनी एक्टिंग को चुनौती के तौर पे लेता है और उसको चाहता है कि अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए, एक बड़े पर्दे पे किया जाए, एक विजुअल के जरिए से किया जाए, एक ऑडियो के जरिए से मैसेज देने की कोशिश करता है। वो एक अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो लोगों के दिल में अपनी जगह बनाता है। किसी ने कहा है, ऑनेस्टी इज द आर्टिस्ट बट एवरी वन इज नॉट ए आर्टिस्ट। बड़ी खूबसूरत बात कही है, और खूबसूरती के साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की है, समाज भी इस बात को मानता है और कबूल करता है कि आर्टिस्ट की जो अहमियत है, जो मान्यता है, जो रिकॉग्निशन है, वो शायद हमें और आपको कबूल करना पड़ेगा। किसी शायर ने बड़ी बहुत ही अच्छी बात और बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि मैं तो गजल सुना के अकेले खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेले खड़ा रहा, सब अपने चाहने वालों में खो गए। तो इसका मतलब यह है कि एक आर्टिस्ट का जो रोल होता है वो समाज को के अंदर जो चीजें चल रही हैं होती हैं उसकी सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता है। अब आप सही मानों में देखें, जो आर्ट एंड कल्चर विंग ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसमें सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, आप अगर देखें कि पैरामेडिकल फोर्सेस, हॉस्पिटल के स्टाफ, स्टूडेंट कम्युनिटी, बिजनेस क्लास, गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग काम करने वाले, कारोबार में जिन लोगों का अपना कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, इन तमाम लोगों ने चार पांच महीनों के अंदर जिंदगी को बिल्कुल अलग तरीके से देखा है और उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की है। तो मेरा ये मानना है कि आर्ट एंड कल्चर विंग एक खूबसूरत प्रोग्राम कर रहा है, और उम्मीद करता हूं मैं कि जो लोग भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, इस प्रोग्राम को देखने के बाद एक उनका मोरल सपोर्ट मिलेगा इस प्रोग्राम को देखने से, और उन्हें जो है एक जिम्मेदार सिटीजन के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, उन्हें भी इस तरह के हालात पे लड़ना चाहिए, और उससे लड़कर ही हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
जब मैं पहली बार डीडी मेट्रो पे दूरदर्शन में शिवानी जी को मैंने 15 मिनट का प्रोग्राम आता था ओम शांति का, वो मैं सुना करता था। उससे पहले मैं हर जगह पे मैं जाता था, कहीं भी शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, घूमता रहता था, एक तलाश हमेशा रहता था कि कहीं से कुछ सुकून की कोई, कुछ अलग से कुछ एहसास हो। तो मैं सिस्टर शिवानी को जब मैंने सुना, उसके बाद मुझे लगा कि ये अलग से कुछ बात कर रही हैं, और मैं उनको फिर रेगुलर मैं उनको, उनका 15 मिनट का प्रोग्राम आता था, फिर मैं सुनने लगा, और मैं धीरे धीरे उनका जब सीडी आया तो मैं पूरा सेट मैंने खरीदा कि ओम शांति का और क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या है, बार बार मैंने सुना, और फिर लास्ट में वो बोलती थी अगर आपको कहीं जाना है, सेंटर में जाना है, तो ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, आप जाइए वहां, जाके आप वहां सिस्टर हैं उनसे बात करें आप। तो मुझे काफी टाइम से ही सुनने के बाद बहुत तलाश हुई, और मैं हमारे लोखंडवाला में सेंटर है, मैं वहां गया और सेंटर में मुझे सिस्टर ने मुझे बुलाया और उन्होंने दिखाया सब कि यहाँ पे ये बाबा का कमरा है और यहाँ पे योग होता है और यहाँ पे मुरली क्लासेस होती हैं, आपको अगर आना है तो आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने कोर्स किया 7 दिन का, सिस्टर ने लिया कोर्स और उसके बाद फिर मैं हर शाम को मैं सेंटर में मैं जाता था और बाबा के रूम में बैठता था, योग करता था, उसके बाद मुरली सुनता था। सुनते सुनते मुझे बहुत गुस्सा आता था लेकिन वो मुरली सुनने के बाद और योग करने के बाद धीरे 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 मेरा गुस्सा खत्म हो गया और मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। फिर मैं मधुबन में जाने का मौका मिला, मैं वहां पे गया एक बार। निखिल भाई हैं हमारे, उन्होंने मुझे काफी मतलब उन्होंने कहा कि नहीं आपको जाना है, तो मैं गया वहां मधुबन में। फिर बाबा का सब कुछ, कहाँ रहते थे बाबा, कैसे, सब देखा हमने। मैं बड़ा, मेरा मन बिल्कुल बहुत ही सुकून मुझे मिल गया और तब से अभी तक मैं जाता रहता हूँ बाबा के पास, मैं ध्यान लगाता हूँ। और संगीत में जो भी रियाज करता हूँ मैं, पहले तो मैं रियाज करता था लेकिन जब से योग वगैरह किया हमने तब से मेरे संगीत में और भी मुझे मजा आने लगा। और एक जिसे बोलते हैं एक सुरों का नशा सा जिसे बोलते हैं, जब मैं गाता हूँ बाबा का नाम लेके तो एक नशा सा जैसे छा जाता है, ऐसा मुझे फील होता था और मैं बस उनके नाम से एक गीत गाना चाहता हूँ।
अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ले चलो, असंद की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो वो अज्ञान है अपना या तो वो अभिमान है। कायरों की पंथी से हृदय वालों की ओर अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम के मर्यादा न तोड़े अपनी सीमा में रहे ना करें अन्याय ना अन्याय औरों का सहे नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत की दीवारों से हम सत के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से
तहदिल से आपका धन्यवाद आपके अनुभव युक्त वक्तव्य के लिए। ज्ञान युक्त गजल से सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाले चंदन दास जी का विशेष धन्यवाद। आज के दौर में परिस्थितियों को परख के निर्णय कर उनका सामना करना मुश्किल प्रतीत होता है। कैसे हम उन्हें सहज संभव कर सकते हैं, इसके लिए हमारे अगले मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी हमारे साथ हैं। आप एक MBBS मेडिकल डॉक्टर हैं, आप ब्रह्मा कुमारीज के RERF के वुमेन्स विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आइए सुनते हैं उनसे राजयोग के अभ्यास से प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियों के बारे में।
ओम शांति। कला एवं संस्कृति विभाग के ई कॉन्फ्रेंस के राजयोग अभ्यास के सत्रों में आपने समझा है आत्मा की सत्य पहचान, परमात्मा की सत्य पहचान एवं परमात्मा से हम योग कैसे लगाएं, उनका ध्यान कैसे करें। आज के इस राजयोग सत्र में हम समझेंगे राजयोग अभ्यास से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं। राजयोग अभ्यास से आत्मा में अंतर्निहित गुणों और शक्तियों का विकास होता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में शक्ति पूजन की परंपरा है। देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं और उनकी अष्टभुजाओं में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। तो भावार्थ ये नहीं है कि वो अस्त्र शस्त्र किसी असुर की हिंसा के लिए हैं, लेकिन वास्तव में वो उनकी दैवी शक्तियों के प्रतीक हैं। और असुर कोई ऐसे मनुष्य नहीं होते जिनके कोई सींग हैं या कोई बड़े दांत होते हैं, लेकिन वास्तव में असुर हमारे भीतर ही हैं, जो मन के विकार हैं, बुराइयां हैं, नकारात्मक वृत्तियां हैं। तो दैवी शक्तियों के द्वारा उनका हम संहार करते हैं, उन्हें हम समाप्त कर पाते हैं। तो हम समझेंगे कि कौन सी ऐसी दैवी शक्तियों का विकास राजयोग के द्वारा हमारे में होता है। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि राजयोग अभ्यास से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है और उसमें सबसे विशेष शक्ति है सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति में हम आज पाते हैं कि अगर किसी ने कोई एक बात कह दी तो हम दो कहेंगे, दो कहा तो हम चार कहेंगे, चार कहा तो आठ कहेंगे। यानी हमारा भाव होता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें या जैसे को तैसा मिलना चाहिए, लेकिन परिणाम क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं और हम सोचते हैं कि हम क्यों चुप रहें, हम क्यों सहन करें जब हमने गलती नहीं की है, और यदि हम चुप रह गए तो फिर हमारी ही गलती मानी जाएगी, हमें कमजोर समझा जाएगा और इसीलिए फिर हम भी उतना ही या उससे अधिक जवाब देते हैं या हम कहेंगे हम एक्शन लेते हैं और छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं वो कई बार बड़ी हो जाती हैं और विनाशकारी तक भी हो जाती हैं। कई बार कोई हमारी अगर निंदा करते हैं या हमारी आलोचना करते हैं, कमी निकालते हैं तो पसंद नहीं आता हमें, उसे भी हम सहन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, कमी सुनना पसंद नहीं होता है। पर कहा गया निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, तो निंदा करने वाला क्या हमारा मित्र हो सकता है? वो तो हमें दुश्मन की तरह लगता है, लेकिन अगर कहा गया है तो जरूर इसमें कुछ राज है। तो वो हमारा मित्र इसलिए है क्योंकि वो हमें हमारी कमी बता रहा है और उस कमी को अगर हम दूर करेंगे तो जीवन में हम आगे बढ़ेंगे अगर हम उसे सकारात्मक लेते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है जब पेड़ फलों से लगता है तो उसे पत्थर ही मारता है, लेकिन फिर भी बदले में उसे क्या मिलता है? मीठा फल। तो प्रकृति में भी ये गुण है कि वो पत्थर की चोट सहकर मीठा फल दे सकती है। तो इंसान जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्या वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता? कर सकता है। जैसे हम देखते हैं जितने भी महापुरुष हुए इस दुनिया में, उनकी विशेषता थी उनके साथ किसी ने कैसा भी किया लेकिन उन्होंने सदा ही दया, करुणा, क्षमा, प्रेम का व्यवहार किया और तभी वो समाज में इतने बड़े परिवर्तन ला सके। चाहे वो ईसा मसीह थे, चाहे वो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा गांधी थे, गुरु नानक देव जी थे, जो भी हम कहेंगे, यदि हम राज्यों का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो परमात्मा जो शांति के सागर हैं, जो प्रेम के सागर हैं, जो सर्वशक्तिवान हैं, उनसे हमें शांति, प्रेम जैसे गुण अनुभव होते हैं और इन गुणों को हम व्यवहार में लाते हैं तो हमारे लिए सहन करना, शांत रहना, धैर्य में रहना, प्रेम से व्यवहार करना सहज हो जाता है। तो राजयोग अभ्यास से हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। राजयोग अभ्यास से दूसरी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है समाने की शक्ति। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, इनसे हमारा जीवन गुजरता है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी हम सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, कभी हमें हानि होती है, कभी लाभ होता है, लेकिन एक योगी हर स्थिति में समान रहता है। वो सुख में, सफलता में, लाभ में वो बहुत गर्व में नहीं आ जाता या अहंकार में नहीं आ जाता, और दुख में, असफलता में वो बहुत निराश और दुखी नहीं होता है क्योंकि पता है कि ये सब कुछ परिवर्तनशील है। तो मन की स्थिति संतुलित बनी रहती है, शांत और स्थिर रहती है। जैसे चित्र में दिखाया है कि एक सागर है, सागर में नदियां जल लेकर आती हैं, कितना भी वो जल लाती हैं, कैसा भी जल होता है, लेकिन सब सागर में समा जाता है। सागर कभी भी अपना किनारा नहीं छोड़ता और जो भी कचरा पड़ता है सागर में, उसमें जो लहरें होती हैं वो हल्की वस्तु को उठाकर बाहर फेंक देती हैं, लेकिन जो भारी वस्तु होती है वो सागर के तले में चली जाती है। तो ऐसे ही योगी का जीवन होता है, कि संसार में हम कितनी अच्छी बुरी बातों को देखते हैं, लेकिन हम वही ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, बाकी सब जैसे कि है ही नहीं। जैसे सागर की सतह पर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन भीतर में सागर बिल्कुल शांत होता है, तो ऐसे जीवन में भी परिस्थितियों रूपी लहरें उठती रहती हैं, लेकिन फिर भी स्व स्थिति से मन योगी का शांत रहता है, स्थिर रहता है। इस बात को हम इस तरह से कहेंगे कि जैसे कबीर दास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही दिए थोथा दे उड़ाए। यानी जो एक साधु व्यक्ति होता है, वो सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, जैसे अनाज साफ करने वाला सूप, वो कचरे को फेंक देता है लेकिन जो उपयोगी अनाज होता है उसे रख लेता है। तो इस संसार की भी जो कचरे जैसी बातें हैं, उन्हें हमें जीवन में नहीं समाना है। किसी के जीवन के अवगुण हैं, बुराइयां हैं, उन्हें हमें नहीं देखना है, लेकिन उनके जो गुण हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो उनकी कलाएं हैं, उन्हें हम देखें, उन्हें हम ग्रहण करें, तो वो हमारे भी जीवन का अंग बनने लगेंगे और उसके कारण उनके प्रति स्नेह और सम्मान का व्यवहार भी हमारा बना रहेगा। ऐसे ही समाने की शक्ति का दूसरा स्वरूप है, मानो कोई हमारे दोस्त हैं, उन्हें कोई समस्या है और वो हमें अपनी समस्या कहते हैं और हमसे उसका हल चाहते हैं। हम सुनते हैं और फिर वो कहते हैं कि देखो ये मेरी बहुत पर्सनल बात है, आप किसी को नहीं कहना। तो हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि जरूर हम ये किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा कोई अपना होता है उसे हम कह देते हैं। फिर हम यही कहते हैं देखो इनकी पर्सनल बात है, आप मत कहना। फिर उनका कोई अपना होता है उसे वो कह देते हैं, और इस तरह से जो बात नहीं फैलनी चाहिए वो फैलती है और उसमें भाव भी बदलता जाता है, क्योंकि हर कोई जिस भाव से उसे समझता है फिर वो अपना भाव भी उसमें मिक्स करता है, और घूम फिर के बात फिर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसकी वो है। तो उन्हें बहुत दुख होता है कि हमने इतना विश्वास किया और हमारे साथ धोखा हुआ। तो कई बार वर्षों पुराने संबंधों में इस वजह से कड़वाहट आ जाती है। तो हमें सिर्फ सहन करना ही नहीं लेकिन समाना भी है। कई बार अगर हम नहीं समाते हैं तो सहन करके कमाल तो किया लेकिन नहीं समाया, तो उस कमाल को जैसे हम कहेंगे धमाल में बदल दिया। तो राजयोग अभ्यास से हमारे अंदर जो शांति और धीरज आता है उससे गंभीरता का गुण होता है, और हमें कोई राज की बात अगर नहीं कहनी है तो हम नहीं कहते, और अगर कहनी ही है तो जहां कहनी है, जब कहनी है, जिस भाव से कहनी है, उसे हम उस शुभ भावना से उस बात को कहते हैं। फिर तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति, और चौथी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। कई बार हमें व्यक्ति परिस्थिति को परखना भी होता है, हम दुविधा में होते हैं, करें नहीं करें, सही है गलत है, उचित है अनुचित है, फिर हमें निर्णय भी लेना होता है, और अगर हम सही निर्णय ले लेते हैं तो फिर हम सफल होते हैं, नहीं तो हमें पश्चाताप करना पड़ता है कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं जौहरी। जौहरी को आभूषणों की परख होती है, वो सोने को परख सकता है कि ये खरा सोना है या मिलावट वाला सोना है, एक हीरा असली हीरा है या नकली हीरा है, और इस आधार पर ही वो व्यापार में सफल होता है, नहीं तो उसे व्यापार में घाटा उठाना पड़ सकता है। तो ये उसके पास एक विशेष ज्ञान है कि कैसे परखा जाए, और उस आधार पर वो परखते हैं। एक डॉक्टर के पास बीमारी का ज्ञान है तो वो बीमारी को परख करके मरीज का इलाज करते हैं। एक जज के पास कानून का ज्ञान है, न्याय की समझ है, तो वो अपराधी के अपराध को समझकर उसके सजा तय करते हैं ताकि न्याय मिले। तो ऐसे ही जिस भी क्षेत्र में हम हैं, अगर उससे संबंधित संपूर्ण ज्ञान है तो हमारी परखने की शक्ति अच्छी होती है। लेकिन जब हम राज्यों का अभ्यास करते हैं तब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, स्वच्छ होती है, और जैसे स्वच्छ जल के भीतर तक हम देख सकते हैं, तले तक हम देख सकते हैं, तो ऐसे ही स्वच्छ बुद्धि से हम व्यक्तियों के मनोभाव भी परख सकते हैं। हमें समझ में आता है कि इनकी भावना क्या है और उस अनुसार फिर हम उनके लिए निर्णय ले सकते हैं। नहीं तो आज के समय में हम देखते हैं कि व्यक्ति अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से वो कुछ और होते हैं, तो कई बार यदि हमने उनके भाव भावनाओं को नहीं परखा तो फिर हम गलत निर्णय ले सकते हैं। निर्णय शक्ति को तराजू से दिखाया है। तराजू के तीन भाग होते हैं, कांटा, डंडा और पलड़ा। तो सही तौल के लिए पलड़े बराबर होने चाहिए, कांटा सीधा होना चाहिए, डंडा संतुलित होना चाहिए। ऐसे ही सही निर्णय के लिए हमारी बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए, हमारा मन संतुलित होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन अगर हम उलझन में हैं, हम अशांत हैं, परेशान हैं, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प मन में चल रहे हैं, तो फिर हम सही निर्णय नहीं ले पाते। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तब हमारा मन शांत होने लगता है, मन एकाग्र होता है, मन संतुलित होता है, और उस स्थिति में हमें निर्णय लेना सहज होता है। हमें परमात्मा की अंतर प्रेरणाएं भी मिलती हैं और वो भी हमें सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। हमारे जीवन में समस्याएं आती ही रहती हैं। एक समस्या पूरी नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, तो हमें उनका सामना करना ही पड़ता है। लेकिन हम किस तरह से उनका सामना करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे चित्र में हम देख रहे हैं मृत्यु, अगर हमारे कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, अगर वो असमय मृत्यु होती है या दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो कई बार लोग इतना दुखी हो जाते हैं कि जैसे उस व्यक्ति के जाने के साथ ही उनका जीवन भी चला गया। वो दिनों तक, महीनों तक, क्या कई बार सालों तक सामान्य नहीं हो पाते। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि ये शरीर की मृत्यु है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। और उस आत्मा का जब तक हमारे साथ कर्म संबंध था तब तक वो हमारे साथ थी, क्योंकि जो समीप के संबंध होते हैं वो तो लेन देन के ही संबंध होते हैं, और जब वो समाप्त हो गया तो उस आत्मा का जहां पार्ट है वहां उसको जाना है, तो वो अलग नाम रूप से अपना अब नया पार्ट प्ले करेगी। तो उनके भविष्य जीवन के लिए हम शुभ भावना रखते हैं, उन्हें शांति का दान देते हैं, क्योंकि हम इस सत्य को भी जानते हैं कि जो चला गया वो तो लौटकर आने वाला नहीं है। तो उनके प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है उसे हम अवश्य पालन करें, लेकिन इतने दुखी ना हो कि हमारे जीवन जीने पर ही असर आ जाए। हम देखते हैं बहुत लोग हमसे बात करते हैं इस बारे में तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको दवाइयां खा करके जीना पड़ता है। ऐसे ही और भी कई समस्याएं, मानो कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है, कई अनहोनी हो जाती है, चोरी होती है, आग लग जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उसमें हम प्रभावित होते हैं। तो एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जो भी परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं उसके कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता है। तो फिर हम जब कर्म की गति को समझते हैं तो हमारा धैर्य बना रहता है। हम ये भी जानते हैं कि हर घटना के दो पहलू हैं, अगर उसमें हमारा कुछ बुरा हो रहा है तो हमारा उसमें कुछ भला भी है। तो हम जब भला देखते हैं, जैसे गीता में कहा, जो हुआ था अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा होगा, तो वो जरूर अवश्य हमारे लिए कुछ ना कुछ भला करके जाती है। नहीं तो हमें जीवन का अनुभव ही बनाती है। जो पाठ हम पाठशाला में नहीं पढ़ सकते वो हम जीवन के अनुभव से पढ़ते हैं, वो हमें परिपक्व बनाती है, मजबूत बनाती है, जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। छठी शक्ति जो है वो है सहयोग की शक्ति। एक राजयोगी सभी का सहयोगी होता है, क्योंकि हमें ये समझ है कि हम सब आत्माएं हैं, परमधाम से सृष्टि पर आए हैं, एक ही परमात्मा की संतान हैं और आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं और ये पूरा विश्व एक परिवार है, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति, भाषा, देश या संस्कृति के हैं। और हम केवल 4-6 लोगों के प्रति ही अपनी शुभ भावना कि यही मेरा परिवार है, इसके प्रति ही मेरा सहयोग है, नहीं, लेकिन पूरे विश्व की आत्माएं हमारा परिवार है और किसी को भी अगर हमारे सहयोग की जरूरत है और हम दे सकते हैं तो अवश्य देते हैं। और जहां सहयोग होता है वहां एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाते हैं, यानी बड़े बड़े कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में, जैसे हम भागवत में सुनते हैं कि जब गोकुल पर बाढ़ का संकट था तो श्री कृष्ण ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर के गोकुल की रक्षा की, लेकिन केवल श्री कृष्ण की उंगली नहीं थी, लेकिन उसमें गोप गोपियों की उंगली का भी सहयोग था। तो ये तो वास्तव में एक प्रतीक है, कोई मिट्टी के पर्वत उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन जब परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के परिवर्तन का कार्य करते हैं तब वो अकेले कोई जादू मंत्र की छड़ी घुमा करके संसार का परिवर्तन नहीं करते, लेकिन उसमें आत्माओं का तन मन धन का सहयोग होता है और उस सहयोग से ये संसार सुखमय संसार बन जाता है। कई बार कई सोचते हैं हम अकेले अगर इतने बड़े विश्व में कोई परिवर्तन कर लेंगे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम हिम्मत रखते हैं तो भगवान की हमें हजार गुना मदद मिलती है। ऐसे ही जब परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा को अपना माध्यम बनाया नई सृष्टि की स्थापना के लिए, उस समय वो बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्होंने जब हिम्मत रखी तो आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है और धीरे धीरे सभी मनुष्य आत्माएं जब सहयोगी बनेंगी तो अवश्य विश्व का परिवर्तन हो ही जाएगा। तो सहयोग की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है। ऐसे ही सातवीं शक्ति जो राज्यों के अभ्यास से प्राप्त होती है वो है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। तो हमें कई बार जो मन बहुत कई विस्तारों में उलझा हुआ होता है उसे समेट कर सार में लाना होता है, और कई बार सार को हमें विस्तार भी करना पड़ता है जहां जब आवश्यकता होती है। तो यहाँ चित्र में देख रहे हैं हम कछुआ। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर पर एक कठोर खोल होता है और उसमें वो अपने अंगों को सुरक्षित रखता है। जब उसे खाना होता है, चलना होता है, तभी वो अपने अंग बाहर निकालता है, नहीं तो वो फिर से उसको समेट लेता है। ऐसे ही योगी का जीवन होता है कि जब उसे कार्य करना है तब वो अपने मन बुद्धि को कार्य में लगाता है, अपने कर्मेंद्रियों से कार्य करता है, उसे कुशलता पूर्वक संपन्न करता है, लेकिन जब कार्य समाप्त हो जाता है तो फिर वो अपनी कर्मेंद्रियों को समेट कर मन को आत्मा में स्थित कर लेता है और आत्मिक शांति, आत्मिक सुख का अनुभव करता है, यहां तक कि वो अपने मन को संसार से भी पार परम धाम में परमात्मा की याद में भी स्थित कर सकता है। और जब वो परमात्मा की याद में होता है तब मन की स्थिति ऊंची होती है, तो फिर परिस्थितियों के प्रभाव से मन न्यारा हो जाता है। तो ये कला कि जब चाहे वो शामिल हो जाए और जब चाहे वो न्यारा हो जाए, ये योगी के अंदर होती है। और आठवीं शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है समेटने की शक्ति। हम सब जानते हैं कि दुनिया एक मुसाफिर खाने की तरह है और कहते हैं कि यहाँ पर जो आया है उसे जाना है, यानी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। लेकिन शायद जीवन भर हम इस सत्य को भूले रहते हैं और हम सोचते हैं जीवन सदा ही है और इसीलिए मोह माया विषयों में मनुष्य का मन उलझा रहता है। तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं इस दुनिया में। एक होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, यानी हम कहेंगे स्वार्थी प्रवृत्ति, कि दूसरे का भी कैसे मेरा हो जाए, ये कोशिश उनकी रहती है। आज दुनिया में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसका कारण कहीं ना कहीं ये वृत्ति है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, आपका मुझे नहीं चाहिए लेकिन जो मेरा है उस पर तो मेरा ही अधिकार है। ये सहज मानवीय वृत्ति है कि हमारा है वो हम आपको नहीं देंगे, पर आपका भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन तीसरी जो वृत्ति होती है वो है आध्यात्मिक वृत्ति, जो सोचते हैं न कुछ तेरा न कुछ मेरा, न इस दुनिया में हम कुछ लेकर के आए और न ही हमें साथ में कुछ लेकर के जाना है। जो मिला है यहां ही मिला है, हम यहां ही प्रयोग करेंगे, यहीं छोड़कर उसको चले जाएंगे। तो वास्तव में कोई कितना भी मिलियनर क्यों ना हो, वो अपने साथ एक पैसा भी नहीं ले जा सकता है। एक कहने में आता है कि कफन में जेब नहीं और कब्र में अलमारी नहीं होती है। एक ज्ञानी योगी व्यक्ति इस राज को समझता है और इसीलिए वो अपना पूरा समय केवल शरीर निर्वाह में, अपने संबंधों के निर्वाह में या धन कमाने में नहीं देता, लेकिन वो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी कुछ समय देता है ताकि वो श्रेष्ठ कर्म कर सके। और वो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी ही आत्मा के साथ जाएगी। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं कि जब हम यात्रा करते हैं तो अपने साथ क्या ले जाते हैं, बहुत आवश्यक सामान। अपना पूरा घर नहीं ले जाते हम, जो बहुत आवश्यक है वही सामान हमारे साथ होता है। और कहा भी जाता है ट्रेवल लाइट, तो ऐसे ही आत्मा भी जब इस संसार से लौटती है तो वो अपने साथ ज्यादा कुछ नहीं ले जाती। जो उसके पापकर्म है उसका भी उस हिसाब उसे यहीं कर देना होता है। वो अपने साथ सिर्फ पुण्य कर्मों की पूंजी, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी ले जाती है जो उसके भविष्य प्रारब्ध होते हैं। तो हम वर्तमान समय में जो संगम युग का समय चल रहा है, परमात्मा के श्रीमत के अनुसार जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वो ही आने वाले जन्म जन्मांतर तक आत्मा का भाग्य बनाते हैं। तो इस तरह से योग अभ्यास से इन अष्ट शक्तियों के द्वारा, गुणों के द्वारा हम पांचों विकारों पर विजय पाने लगते हैं। काम विकार पर विजय होती है क्योंकि शुद्ध दृष्टि वृत्ति हो जाती है। जब हम आत्मा समझते हैं तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति हमारी शुद्ध दृष्टि है। आत्मा देह की सीमाओं से परे होती है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। क्रोध पर जीत होती है क्योंकि मन शांत होता है और मन में धैर्य, क्षमा, प्रेम के गुण आ जाते हैं, उससे हमें क्रोध कम आता है या आता ही नहीं है। ऐसे ही लोभ पर जीत होती है क्योंकि हमारे अंदर संतोष का गुण आता है और हम स्वार्थी नहीं परोपकारी बनते हैं। मोह समाप्त होता है क्योंकि हमारी वृत्ति अनासक्त होती है, हमें पता है ये सब कुछ विनाशी है, कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं, तो हम ट्रस्टी भाव से उसे प्रयोग करते हैं। अहंकार समाप्त होता है क्योंकि निमित्त भाव आ जाता है, हम समझते हैं कि परमात्मा करण करावनहार है और इस तरह से मैंपन खत्म होकर के नम्रता का गुण आने लगता है। तो स्व परिवर्तन होता है, जब स्व परिवर्तन होता है तो हमें ही जीवन में सच्ची सुख शांति वर्तमान में अनुभव होती है और वही हम अपने परिवार में और समाज में भी दूसरों को देते हैं। और इस तरह से हम विश्व परिवर्तन के परमात्मा के इस महान कार्य में भी सहयोगी बन जाते हैं। तो ये थी राजयोग के द्वारा प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियां। और हम प्रतिदिन यदि योग का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से इन शक्तियों का और गुणों का विकास हमारे जीवन में होने लगता है। तो अभी हम कुछ मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठेंगे और ईश्वर से शक्तियों को स्वयं में धारण करेंगे। मन को चिंतन दें, मैं एक दिव्य ज्योति चेतन शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा मस्तक के मध्य में एक चमकते हुए सितारे के समान हूं। इस शरीर की मालिक हूं। अपने निजी स्वभाव में मैं शांत स्वरूप हूं। प्रेम स्वरूप हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, मेरा निज धाम परम धाम है, जहाँ मेरे परम पिता निवास करते हैं, वो भी मेरे ही समान परम ज्योति स्वरूप हैं। मैं मन रूपी अंतरचक्षु के द्वारा परमात्मा को देख रही हूँ, उनके समीप अनुभव कर रही हूँ। वो शांति के सागर हैं, उनके समीपता में मेरा मन शांत होता जा रहा है। वो सर्वशक्तिवान है, परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं स्वयं को समर्थ अनुभव कर रही हूं। जब सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो मैं कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ, मुश्किल को आसान कर सकती हूँ, अपने जीवन में जो परिवर्तन मैं लाना चाहूँ ला सकती हूँ। वो हर कर्म में मेरे साथी हैं, परमात्मा से शक्तियों का अनुभव लेकर मैं स्वयं को पुनः इस साकार जगत में कर्म क्षेत्र में अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।
अंतर्मन से विशेष धन्यवाद डॉक्टर सविता दीदी का अपनी रूहानी प्रज्ञा हमसे शेयर करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज शाम 6:30 बजे हम फिर मिलेंगे ई कॉन्फ्रेंस के कंक्लूडिंग 4th सेशन में। लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन सिस्टर पी के शिवानी हु विल एनलाइटन अस इन द इवनिंग। जॉइनिंग हर विल बी भजन सम्राट अनूप चलोटा जी। थैंक यू एंड ओम शांति।
When I look at the state of the world and I see the tremendous amount of sorrow and suffering, then I ask myself the question, is there something I can do, not just to help myself, but to take away the pain and sorrow of others? And what comes to mind is the fact that if people could get a glimpse of the spiritual dimension and understand that there's different ways to deal with the situation of the world than we've been doing in the last little while, if a group here, a group here, a group here begin to look at things differently and start making changes in their lives, then I think that the pain and sorrow of the world could be relieved, and that would give me great contentment. So my hope is that people find that light that's going to help them shift their understanding and perception and what it is they do.
नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के एक